एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं रॉन चर्नो की एक बहुत ही दिलचस्प किताब ग्रांट के बारे में। ये किताब है यूलिसिस एस ग्रांट के बारे में, जो अमेरिकी इतिहास के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं।
जी हाँ, और ऐसी शख्सियत जिनके बारे में शायद बहुत सी गलत फहमियाँ भी रही हैं। ग्रांट मतलब अमेरिकी गृह युद्ध के हीरो, बाद में राष्ट्रपति भी बने।
लेकिन अक्सर उनकी छवि कैसी बनाई गई है, एक अनाड़ी, शायद शराबी, एक नाकाम राष्ट्रपति। चर्नो इसी छवि को मतलब पूरी तरह से चुनौती देते हैं।
बिल्कुल, चर्नो का तर्क है कि ग्रांट असल में एक असाधारण सैन्य कमांडर थे, नागरिक अधिकारों के आप कह सकते हैं जबरदस्त हिमायती थे, और एक ऐसे नेता थे जो अपने वक्त से बहुत आगे सोच रहे थे।
तो ये कहानी सिर्फ ग्रांट की नहीं है, बल्कि ये भी है कि इतिहास में किसी की प्रतिष्ठा कैसे बनती है या फिर कैसे बिगाड़ी जाती है।
हाँ, और चर्नो खास तौर पर ये दिखाते हैं कि कैसे नस्लीय सोच और वो जो लॉस्ट कॉज वाली झूठी कहानी गढ़ी गई, मतलब हारे हुए दक्षिणी राज्यों ने जो अपनी हार को महिमामंडित करने की कोशिश की, उसने कैसे जानबूझकर ग्रांट की विरासत को नुकसान पहुंचाया।
और आज उनकी कहानी को समझना क्यों जरूरी है?
इसलिए क्योंकि ये हमें सिखाती है कि इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उसे आलोचनात्मक नजरिए से देखना चाहिए, और ये भी कि कैसे अतीत की गलत धारणाएं आज भी असर डालती हैं। तो चलिए ग्रांट के जीवन की यात्रा और चरणों के नजरिए को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ग्रांट के शुरुआती सालों से। ओहायो में जन्म हुआ, माहौल बहुत साधारण था। पिता जेसी ग्रांट चमड़े का काम करते थे और गुलामी के खिलाफ थे। इसका कुछ असर पड़ा ग्रांट पर?
हाँ बिल्कुल पड़ा होगा, पिता के विचार कहीं ना कहीं उनके मन में रहे होंगे, हालांकि शुरू में वो बहुत मुखर नहीं थे इस बारे में। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकेडमी जाने का कोई शौक नहीं था।
अच्छा, मिलिट्री एकेडमी नहीं जाना चाहते थे?
हाँ, हिचका रहे थे। पढ़ाई में ठीक थे, मैथ्स अच्छा था, पर वो जो फौजी अनुशासन होता है ना, वो उन्हें खास पसंद नहीं था। और उनमें शुरू से ही मतलब एक तरह की नैतिक संवेदनशीलता थी। हिंसा, क्रूरता, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता था।
फिर आया मैक्सिकन युद्ध का अनुभव। वहां उन्होंने जैकरी टेलर और विनफील्ड स्कॉट जैसे बड़े जनरलों के नीचे काम किया। वहां क्या सीखा?
वो उनके लिए एक सीखने का बहुत बड़ा मौका था। उन्होंने युद्ध को, रणनीति को, नेतृत्व को बहुत करीब से देखा, और यहीं पे उनकी अपनी सोच, मतलब एक आक्रामक और निर्णायक युद्ध की सोच, वो विकसित होनी शुरू हुई।
उनका एक पैटर्न भी उभर कर आया शायद?
हाँ, एक पैटर्न। पहले शांत रहकर पूरी स्थिति को समझना, और फिर पूरी हिम्मत और तेजी से कार्रवाई करना, ये चीज उनके पूरे मिलिट्री करियर में दिखी।
लेकिन युद्ध के बाद का दौर, जिसे संघर्ष के वर्ष या विल्डरनेस ईयर्स कहा जाता है, वो तो काफी मुश्किल था उनके लिए। सेना से इस्तीफा दे दिया और फिर जैसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था।
सही कहा, वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे निचला दौर था। सेना छोड़ने के बाद उन्होंने खेती करने की कोशिश की, अपने फार्म का नाम रखा हार्ड स्क्रैबल, मतलब बड़ी मुश्किल से गुजारा, वो नहीं चला।
फिर
रियल एस्टेट में हाथ आजमाया, किराया वसूली का काम किया, सब में नाकाम रहे, और आखिरकार उन्हें गलेना, इलिनॉय में अपने पिता की ही चमड़े की दुकान पर क्लर्क का काम करना पड़ा। सोचिए, एक पूर्व आर्मी कैप्टन के लिए ये कितना कितना मुश्किल रहा होगा।
लेकिन चरनो मानते हैं कि ये नाकामी भी बेकार नहीं गई।
नहीं, बिल्कुल नहीं। चरनो का तर्क यही है कि इन्हीं असफलताओं ने ग्रांट को आम लोगों के संघर्षों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाया। उनमें गहरी सहानुभूति पैदा हुई और उनका जो दृढ़ संकल्प था वो और मजबूत हुआ।
इसी दौरान शराब की समस्या भी थी?
हाँ, वो समस्या भी थी जिससे वो जूझ रहे थे। अक्सर ये अकेलेपन और बोरियत से शुरू होती थी, खासकर जब वो दूर दराज की चौकियों पर तैनात थे। लेकिन उनकी पत्नी जूलिया, वो इस मुश्किल वक्त में उनका बहुत बड़ा सहारा बनी। तो ये जो दौर था, इसने उन्हें गढ़ा एक तरह से। उनमें वो लचीलापन आया, मुश्किलों को समझने की क्षमता आई, जो बाद में उनके नेतृत्व में बहुत काम आई।
और फिर आया 1861, ग्रे युद्ध शुरू हो गया, और ये ग्रांट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
बिल्कुल, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। एक गुमनाम संघर्ष कर रहे पूर्व सैनिक से वो अचानक इलिनॉय वॉलंटियर्स के कर्नल बने, और फिर तो उनकी सैन्य प्रतिभा जैसे खिल उठी, वो तेजी से ऊपर बढ़ते गए।
फोर्ट हेनरी और फोर्ट डोनाल्डसन की जीतें, ये शुरुआती बड़ी सफलताएं थी यूनियन के लिए।
हाँ, पहली बड़ी जीतें, और यहीं पर उन्होंने दुश्मन कमांडर को वो मशहूर जवाब दिया, नो टर्म्स एक्सेप्ट एन अनकंडीशनल एंड इमीडिएट सरेंडर, मतलब सिर्फ बिना शर्त आत्मसमर्पण, और यहीं से उनका निकनेम पड़ गया अनकंडीशनल सरेंडर ग्रांट। ग्रांट ने भारी दबाव में भी अपनी जगह नहीं छोड़ी, शांत बने रहे, लेकिन इतने बड़े नुकसान के लिए उनकी बहुत आलोचना हुई। यहीं से उन पर कसाई होने का ठप्पा लगना शुरू हुआ।
इसके बाद आया विक्सबर्ग अभियान। चेर्नो इसे ग्रांट की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि मानते हैं।
हाँ, चेर्नो इसे ग्रांट की मास्टरपीस कहते हैं। ये कोई सीधी साधी लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही साहसिक और जटिल अभियान था। ग्रांट ने इसमें पारंपरिक सैन्य सोच से हटकर काम किया। अपनी सप्लाई लाइनों की चिंता किए बिना वो दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुस गए।
और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था विक्सबर्ग?
क्योंकि विक्सबर्ग मिसिसिपी नदी पर कॉन्फेडरेसी का आखिरी बड़ा गढ़ था। इस पर कब्जा करने का मतलब था पूरी मिसिसिपी नदी पर यूनियन का नियंत्रण। और इससे भी बड़ी बात, कॉन्फेडरेसी भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बट गई।
अच्छा।
इसने ग्रांट को एक महान रणनीतिकार के तौर पर स्थापित कर दिया। राष्ट्रपति लिंकन का भरोसा उन पर पूरी तरह जम गया। लिंकन ने तब कहा भी था, मुझे मेरा जीतने वाला जनरल मिल गया है। ये युद्ध का एक निर्णायक मोड़ था जिसने यूनियन की जीत का रास्ता साफ कर दिया।
इसके बाद लिंकन ने उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल का पद दिया, जो समय बहुत बड़ी बात थी, और सभी यूनियन सेनाओं की कमान उनके हाथ में आ गई। अब उनका सीधा मुकाबला था रॉबर्ट ई ली से।
जी, और यहीं पर वो ग्रांट द बुचर यानी कसाई ग्रांट वाली छवि और ज्यादा फैली, खासकर ओवरलैंड अभियान के दौरान। वाइल्डनेस, स्पॉट्सिल्वेनिया, कोल्ड हार्बर, ये बहुत ही भयानक और खूनी लड़ाइयां थीं।
लेकिन चेर्नो इस कसाई वाली छवि को नहीं मानते, उनका क्या तर्क है?
चेर्नो कहते हैं कि ये छवि गलत है, या कम से कम अधूरी है। ग्रांट वो आधुनिक युद्ध की सच्चाई को समझ रहे थे, जिसे टोटल वॉर कहते हैं। वो जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ दुश्मन की सेना को हराना काफी नहीं है।
तो फिर क्या जरूरी था?
दुश्मन के लड़ने की इच्छा शक्ति को तोड़ना, उनके संसाधनों को नष्ट करना जरूरी था। ग्रांट का मानना था कि लगातार जोरदार हमले करते रहना, भले ही शुरू में ज्यादा सैनिक क्यों न मारे जाए, युद्ध को जल्दी खत्म करेगा और अंत में कुल मिलाकर ज्यादा जाने बचाएगा। वो पीछे हटने की बजाय दुश्मन पर लगातार दबाव बनाए रखने में विश्वास करते थे।
और अंततः एपोमैटॉक्स कोर्ट हाउस में ली ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस मौके पर ग्रांट का रवैया कैसा था?
बहुत ही उदार, असाधारण उदारता दिखाई उन्होंने। उन्होंने हारे हुए कॉन्फिडेंट सैनिकों को उनके घोड़े और निजी हथियार तक रखने की इजाजत दे दी, उनके लिए खाने का इंतजाम करवाया। उनका मकसद जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं था, बल्कि सुलह का माहौल बनाना था, देश को फिर से जोड़ना था। उन्होंने कहा भी, द वॉर इज ओवर, द रेबल्स आर आवर कंट्रीमैन अगेन।
युद्ध खत्म हुआ और फिर ग्रांट दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। चेर्नो का मानना है कि उनके राष्ट्रपति काल को भी अक्सर मतलब सही से नहीं समझा गया, खासकर नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर।
बिल्कुल, ये चेर्नो की किताब का शायद सबसे अहम और संशोधनवादी हिस्सा है। देखिए, ग्रांट जब राष्ट्रपति बने तो उनका मुख्य लक्ष्य था दक्षिण में शांति कायम करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी, जो लाखों अफ्रीकी अमेरिकन दास्ता से आजाद हुए थे, उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा करना।
और ये आसान नहीं रहा होगा।
बिल्कुल नहीं। दक्षिण में श्वेत वर्चस्ववादी सोच वाले लोग फिर से सिर उठा रहे थे। कू क्लक्स क्लैन, KKK जैसे आतंकी गुट बन गए थे, जो अश्वेत लोगों और उनके समर्थक गोरों पर भयानक अत्याचार कर रहे थे, वोट देने से रोक रहे थे, मारपीट, हत्याएं, ये सब चल रहा था।
तो ग्रांट ने इसका सामना कैसे किया? ये भी उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ माना जा सकता है।
हाँ, निश्चित रूप से। ग्रांट ने इसे सीधी चुनौती माना। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट यानी न्याय विभाग को मजबूत किया। उन्होंने एनफोर्समेंट एक्ट्स जैसे सख्त कानून पास करवाए।
इन कानूनों से क्या हुआ?
इनसे संघीय सरकार को, मतलब केंद्र सरकार को, ये अधिकार मिला कि वो इन आतंकी गुटों के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकें।
ग्रांट ने KKK को कुचलने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। हजारों क्लान सदस्यों पर मुकदमे चलाए गए, उन्हें सजाएं हुई। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम था।
ये तो वाकई असाधारण बात है उस दौर को देखते हुए।
जी हाँ, कुछ समय के लिए उन्हें इसमें काफी सफलता भी मिली। दक्षिण में आतंक का माहौल कुछ कम हुआ। ये दिखाता है कि ग्रांट नागरिक अधिकारों को लेकर कितने प्रतिबद्ध थे।
उन्होंने 15वें संशोधन को पास करवाने में भी अहम भूमिका निभाई, जिससे अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला।
लेकिन विडम्बना यह है कि उनके इन्हीं कामों की वजह से बाद में उनकी छवि खराब करने की कोशिश हुई।
हाँ बिल्कुल, जो लॉस्ट कॉज वाले इतिहासकार थे उन्होंने ग्रांट को इन्हीं वजहों से विलेन बनाने की कोशिश की, कहा कि वो दक्षिण पर जुल्म कर रहे थे।
पर उनके प्रशासन पर भ्रष्टाचार के भी तो गंभीर आरोप लगे थे, क्रेडिट मोबिलियर स्कैंडल, विस्की रिंग।
हाँ वो आरोप भी सच है और ये उनके राष्ट्रपति काल की एक दुखद सच्चाई है। चरणों का मानना है कि ग्रांट खुद ईमानदार थे, मतलब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई भ्रष्टाचार नहीं किया।
तो फिर घोटाले कैसे हुए?
दिक्कत ये थी कि ग्रांट अपने दोस्तों और सहयोगियों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। वो वफादार बहुत थे लेकिन शायद थोड़े भोले भी थे। वो लोगों के असली चरित्र को पहचानने में उतने माहिर नहीं थे।
अच्छा,
तो कई बार उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया और उन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया, जिससे पूरे प्रशासन का नाम खराब हुआ। तो कह सकते कि उनकी वफादारी उनकी कमजोरी भी साबित हुई।
उन्होंने मूल अमेरिकियों के लिए भी कुछ करने की कोशिश की थी?
हाँ, उन्होंने एक शांति नीति, पीस पॉलिसी अपनाने की कोशिश की थी। उनका मकसद मूल अमेरिकियों का सफाया करना नहीं, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना, उन्हें सुरक्षा देना था। ये एक नेक प्रयास था, पर जमीनी हकीकत और राजनीतिक दबाव के चलते ये नीति भी बहुत सफल नहीं हो पाई।
राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद का जीवन कैसा रहा? उन्होंने दुनिया का दौरा किया, काफी सम्मान मिला।
हाँ, उन्होंने एक लंबा विश्व दौरा किया जहाँ उन्हें एक ग्लोबल हस्ती के तौर पर बहुत इज्जत मिली। लेकिन अमेरिका लौटने के बाद उनके साथ एक बहुत बड़ा वित्तीय धोखा हुआ।
वो क्या था?
फर्डिनैंड वार्ड नाम का एक आदमी था जिसने ग्रांट के बेटे के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट फर्म खोली थी। वार्ड ने ग्रांट के नाम का इस्तेमाल करके एक पोंजी स्कीम चलाई और ग्रांट समेत बहुत से लोगों का पैसा डुबो दिया। ग्रांट पूरी तरह दिवालिया हो गए। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा और सार्वजनिक अपमान था।
और इसी मुश्किल दौर में उन्हें कैंसर का भी पता चला?
जी हाँ, गले का कैंसर। और यहीं पर ग्रांट ने अपना आखिरी और शायद सबसे महान काम किया,
अपने संस्मरण लिखना।
बिल्कुल, मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। उन्हें बोलने और निगलने में भयानक दर्द होता था, लेकिन अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए और शायद इतिहास में अपना नाम साफ करने के लिए भी उन्होंने अपने संस्मरण, पर्सनल मेमोयर्स ऑफ यूएस ग्रांट, लिखना शुरू किया।
मार्क ट्वेन ने भी मदद की थी शायद?
हाँ, मशहूर लेखक मार्क ट्वेन उनके प्रकाशक बने और उन्होंने ग्रांट को बहुत प्रोत्साहित किया। ग्रांट ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर असहनीय दर्द सहते हुए अपनी मृत्यु से बस कुछ ही दिन पहले इसे पूरा किया।
और ये किताब बहुत सफल रही?
जबरदस्त सफल। ये बेस्ट सेलर बनी और इसने ग्रांट के परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर दिया। और आज भी इसे अमेरिकी साहित्य की महान कृतियों में गिना जाता है। ये उनकी हिम्मत, उनकी गरिमा का एक अद्भुत प्रमाण है।
तो अगर हम ग्रांट के मूल विचारों, उनके मूल्यों को समेटने की कोशिश करें तो क्या चीजें उभर कर आती हैं? शर्मो ने दिखाया कि कैसे गुलामी पर उनके विचार बदले।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रांट शुरू में शायद गुलामी को लेकर उतने चिंतित नहीं थे जैसा उस समय के बहुत से उत्तरी लोग थे, लेकिन गृह युद्ध ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने अश्वेत सैनिकों की बहादुरी देखी, आजाद हुए दासों की इंसानियत और उनकी मुश्किलों को करीब से महसूस किया।
और वो बदल गए?
हाँ, वो पूरी तरह बदल गए और वो अपने समय के सबसे आगे सोचने वाले नस्लीय सुधारकों में से एक बन गए। उनके मूल में कर्तव्य की भावना थी, मुश्किलों में टिके रहने का जज्बा था, वो जो हमने उनके संघर्ष के वर्षों में देखा। एक शांत लेकिन बहुत मजबूत इरादा था और वफादारी, जो उनकी ताकत भी थी और कमजोरी भी।
जीवन, सफलता, असफलता, इस पर उनका क्या नजरिया था?
देखिए, उनका मानना था कि युद्ध जीतने के लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन युद्ध अपने आप में लक्ष्य नहीं है। युद्ध का अंतिम मकसद शांति लाना है। पहले उनका लक्ष्य था देश को बचाना, यूनियन को बचाना, और फिर उनका लक्ष्य बना सच्ची समानता और मेल मिलाप के लिए काम करना और हमेशा कमजोरों की रक्षा करना। उनका एक सिद्धांत था, कमजोरों को ताकतवरों से बचाना।
ग्रांट का जीवन इतने उतार चढ़ाव से भरा है, उनकी कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? आम इंसानों के लिए इसमें क्या सबक हैं?
बहुत सारे सबक हैं। सबसे पहले तो ये कि बड़ी से बड़ी नाकामी से भी वापसी की जा सकती है, जैसे उन्होंने अपने संघर्ष के वर्षों के बाद वापसी की, या फिर जब वो दिवालिया हो गए थे उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
व्यक्तिगत संघर्षों से जूझना, जैसे शराब की लत।
हाँ, ये भी एक बड़ा सबक है, व्यक्तिगत कमजोरियों से जूझना और उन पर काबू पाने की कोशिश करना। फिर नेतृत्व का बोझ उठाना, युद्ध में सैनिकों की मौत की भारी जिम्मेदारी लेना, या राष्ट्रपति के तौर पर लगातार राजनीतिक हमलों और आलोचनाओं का सामना करना, ये सब आसान नहीं होता।
उनकी कहानी वफादारी के दोनों पहलू भी दिखाती है ना, दोस्तों का साथ देना जरूरी है पर अंधे भरोसे के खतरे भी हैं।
बिल्कुल, जैसा उनके राष्ट्रपति काल के घोटालों में दिखा। और शायद सबसे बड़ा सबक है नैतिक साहस, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाना, भले ही वो रास्ता मुश्किल हो, भले ही आपको अकेला खड़ा होना पड़े, जैसा उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए किया।
और अंत में मौत के सामने भी एक मकसद ढूंढ लेना, अपनी विरासत को संवारना, जैसा उन्होंने अपने संस्मरण लिखकर किया।
प्रतिभा को पहचानना, बातों से नहीं काम से नेतृत्व करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, और हाँ, भरोसा करने में समझदारी बरतना।
चलिए तो फिर इस पूरी बातचीत के आखिर में तीन मुख्य बातें निकालते हैं। पहला, एक भावनात्मक पहलू।
ग्रांट का जीवन हमें खामोश सहन शक्ति और मुश्किल हालात में भी गरिमा बनाए रखने की एक गहरी भावनात्मक सीख देता है। ये खास तौर पर उनकी शुरुआती असफलताओं और फिर अंत में कैंसर से जूझते हुए अपने संस्मरण लिखने के उनके असाधारण काम में साफ झलकता है।
दूसरा, एक बौद्धिक निष्कर्ष।
ग्रांट सिर्फ एक महान सैन्य रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि वो एक दूरदर्शी राष्ट्रपति भी थे, जिनकी नागरिक अधिकारों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता उनके अपने समय से कहीं आगे थी। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे लॉस्ट कॉज की झूठी कहानी ने जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जिसे समझने में हमें इतना वक्त लग गया।
और आखिर में एक सार्वभौमिक सबक।
असली महानता अक्सर निजी संघर्षों और असफलताओं के दौर से गुजर कर ही हासिल होती है। ग्रांट की कहानी ये भी दिखाती है कि नैतिक साहस का मतलब है अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, भले ही उसकी कोई भी राजनीतिक या व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
बिल्कुल, और चरणों की ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे बार बार देखने, समझने और उस पर सवाल उठाने की जरूरत है।
हाँ, ताकि हम अतीत को ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी से देख सकें और उससे सही सबक सीख सकें। ग्रांट की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।